नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार, लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जी राजा रमन। राजा रमन जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू सो मच प्रशांत।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला कल। एएफसी एशियाई कप क्वालिफायर फुटबॉल प्रतियोगिता में कल भारत का सामना सिंगापुर से। भारत विश्व जूनियर मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। बात करें महिला क्रिकेट विश्व कप की, तो कोलंबो में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 20 ओवर में 6 विकेट पर 68 रन बना लिए हैं। हालांकि बात करें इस मैच की, तो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही थी, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने अभी गेंदबाजी की है, काफी काबिल तारीफ रहेगी उनकी गेंदबाजी।
उनकी बल्लेबाजी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जो 90 विकेट की साझेदारी थी शायद ऑस्ट्रेलिया को बचा दिया है। लेकिन 120 रन भी शायद बहुत ज़्यादा होते पाकिस्तान के लिए। उनके बल्लेबाज लड़खड़ा जाते हैं सामने, अगर गेंदबाजी नफीतुली हो तो वो लड़खड़ा जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को जीतना था ये मैच, लेकिन पाकिस्तान के पास एक मौका था जब उन्हें उनके 7 या 8 विकेट चटका दिए थे। एक अच्छा मौका बनाया था पाकिस्तान के गेंदबाजों ने, लेकिन मुनी का एक शानदार शतक था, उसके चलते 220 का स्कोर हो गया ऑस्ट्रेलिया का। वहाँ से तो मैच पाकिस्तान का जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता।
जी बिल्कुल, और जैसे हम आईसीसी टूर्नामेंट की भी बात करें, तो चाहे वो महिला वर्ग हो या पुरुष वर्ग, लगातार ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है। तो क्या मानसिकता रहती है उनकी जब इस तरह के टूर्नामेंट में उतरते हैं? तो
नहीं, वो हार से डरते नहीं है प्रशांत। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जीत से बहुत लगाव है उनका और जीतना चाहते हैं। वही देखने मिला जो फाइट बैक हुआ है उनका आज। 8 विकेट गिर गए थे, 120 रन बने थे उनके, उसके बाद 100 रन की साझेदारी बनी। ये दिखाता है कि वो फाइटर्स हैं, वो हार नहीं मानते काफ़ी आसानी से। ये मानसिकता ऑस्ट्रेलिया का एक कैरेक्टरिस्टिक है, उनका अपना ट्रेडमार्क है। बाकी देश भी सीख चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया उसको अपना बना चुका है।
जी, बात करें अगर कल के मुकाबले के बारे में, तो कल विशाखापट्टनम में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट।
टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही भारतीय टीम बुलंद हौसलों के साथ मैदान में उतरेगी। भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन और दूसरे मैच में पाकिस्तान को 88 रन से करारी शिकस्त दी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड से पहला मैच हारने के बाद दूसरे में न्यूजीलैंड को हराकर शानदार वापसी की। भारतीय टीम का शीर्ष बल्लेबाजी क्रम पिछले 2 मैचों से खामोश है। वहीं भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। पहले मैच में दीप्ति शर्मा और दूसरे मैच में क्रांति गौड़ को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले में सबकी निगाहें स्मृति मंधाना और तंजिम ब्रिट्स पर होंगी। ये दोनों खिलाड़ी इस साल महिला एक दिवसीय में सबसे ज्यादा रन और शतक बनाने वाली खिलाड़ी हैं। भारतीय टीम अंक तालिका में दूसरे और दक्षिण अफ्रीका 5वें स्थान पर है। कुल मिलाकर भारतीय टीम जीत की लय को बरकरार रखने और दक्षिण अफ्रीका बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ मैदान पर उतरेगी। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
हालांकि इस मुकाबले की बात करें, तो अगर स्मृति मंधाना एक वरिष्ठ खिलाड़ी रही हैं भारत के लिए, तो उनका हालिया प्रदर्शन तो काफ़ी शानदार रहा है इस टूर्नामेंट में। हालांकि वो अच्छा प्रदर्शन अब तक नहीं कर पाई है, लेकिन अब भी वो शीर्ष के खिलाड़ी हैं, तो कैसे देखते हैं
प्रशांत? हम चाहे फैन हो या आलोचक हो, कुछ एक दो खिलाड़ी पर हमेशा हमारी नज़र बनी रहती है। टीम अगर जीत रही है, कोई ना कोई योगदान दे रहा है। अगर टीम में कोई भी योगदान दिया है और टीम आगे बढ़ रही है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए हमें। हम हमेशा एक या दो फैंस पे, चाहे वो विराट कोहली या रोहित शर्मा हो या स्मृति मंधाना हो या कप्तान हरमनप्रीत कौर क्यों ना हो, इनका फॉर्म में नहीं होना हमारे लिए बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनके पास अनुभव इतना है, एक ही इनिंग चाहिए इनको वापस आने में, लय वापस लाने में। और जिस तरीके से स्मृति बल्लेबाजी करती है, मेरा ये मानना है कि दो एक दिन में हमें देखने मिलेगा कि स्मृति अपने फॉर्म में वापस आएगी। और ये अच्छी बात है कि फॉर्म अभी शुरुआत में ख़त्म नहीं हो रहा है, वो लेकर आएगी तो फाइनल तक उसका पूरा फायदा होगा।
जी, अगर दोनों विभागों की बात करें, अगर हम तीन विभाग जैसे क्रिकेट में होते हैं, तो गेंदबाजी में तो अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है भारतीय टीम, लेकिन बल्लेबाजी में ही कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा रही है, चाहे वो कप्तान हरमनप्रीत कौर हो या बाकी भी शीर्ष क्रम के जो बल्लेबाज हैं, तो उनको भी प्रदर्शन अच्छा करने की।
बिल्कुल, सबको करना चाहिए, खास करके जब शुरुआत में रन नहीं बनते हैं, 10 ओवर में 40 या 50 रन बनते हैं, दबाव बन जाता है बाकियों पे। तो मेरा ये मानना है कि भारत के पास वो अनुभव है, वो खिलाड़ी है जो हमेशा दिक्कत से दूर ले जा सकती है भारतीय टीम को। यही देखने मिला पिछले मैच में, स्मृति के रन नहीं बने, हरमनप्रीत के नहीं बने, लेकिन हरलीन ने रन बना दिए। कोई ना कोई बनाता है रन, और ये काफ़ी होते हैं जीतने के लिए। हम अपने घर में खेल रहे हैं, हालांकि पिछला मैच हमारा श्रीलंका में कोलंबो में हुआ था पाकिस्तान के साथ। जब घर पे खेलते हैं तो हमारे खिलाड़ियों को पता है कि यहाँ के पिचेस में कैसे बल्लेबाजी करना है या कैसे गेंदबाजी करना है। मेरा मानना है ये मैच भारत फेवरेट बन के जाएगी, एक मौका है सबके पास अपना फॉर्म वापस लाने के लिए।
जी, विश्व कप में तो उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्हें अभी पूर्व प्रदर्शन के लिए, उन्हें पिछले माह सितंबर में अच्छा प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। और पुरुष वर्ग में भी बात करें तो अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव को भी इस श्रेणी में रखा गया, तो कैसे देखते हैं इन दोनों का चुनाव होने वाले इंडियन ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए?
नहीं, अगर हम क्रिकेटर मेन क्रिकेट की बात करें तो एक अच्छा टूर होगा, खास करके रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है, लोगों की नज़र उन पर रहेंगी। लेकिन भारत का टीम बहुत ही स्ट्रांग टीम है, शुभमन गिल की कप्तानी होगी उधर, ये देखने मिलेगा कि वनडे इंटरनेशनल में वो कप्तानी कैसे करेंगे, क्योंकि विश्व कप में शायद वही कप्तान रहेंगे। एक अच्छा मौका है हमारे पास, एक टफ ऑपोजिशन के साथ खेल के वहां पे हमारे कप्तान को भी परखने का एक मौका मिल जाता है।
जी, एएफसी एशियाई कप क्वालिफायर फुटबॉल प्रतियोगिता में कल भारत का सामना मेजबान सिंगापुर से होगा, वहीं 14 अक्टूबर को गोवा में भी दोनों टीम एक बार फिर आमने सामने होंगी। भारतीय टीम ग्रुप सी में सबसे निचले पायदान पर है और शुरुआती दो मैच में सिर्फ एक ही अंक हासिल कर पाई है। हालांकि इस प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन तो उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन सुनील छेत्री के रिटायरमेंट से वापसी के कारण कितना उनका मनोबल बढ़ेगा टीम का?
प्रशांत, मेरी अपनी पर्सनल सोच है ये, शायद कुछ हमारे श्रोता मेरी बात से वाकिफ नहीं रहेंगे, दे माइट नॉट एग्री विथ मी, लेकिन बात यह है कि जब आपके 40 साल के कोई सुपरस्टार खिलाड़ी रिटायरमेंट से आप वापस ला रहे हो, उन पे आप डिपेंड कर रहे हो कि वो गोल बनाएंगे, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपका कबर्ड काफ़ी एम्प्टी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया स्टार्ट ग्रूमिंग मोर प्लेयर्स। सुनील छेत्री बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, भारत के सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर्स में बिल्कुल नंबर वन गोल स्कोरर है, लेकिन उन पे डिपेंड करना हमेशा अब कब तक करते रहेंगे आप? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टूर्नामेंट में जब आप बहुत आगे जा नहीं सकते, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ग्रूम अ सेकेंड लाइन, और ये मौका है भारत के पास एक अच्छा टीम बनाने का, ताकि भविष्य में जो दिक्कतें अभी देखने को मिल रहा है वो वापस देखने ना मिले।
जी, बात करें एक और टूर्नामेंट की जो पश्चिम बंगाल में खेला जा रहा है। ईस्ट बंगाल एफसी ने आज आईएफए शील्ड फुटबॉल प्रतियोगिता में श्रीनिधि डेक्कन एफसी को 4-0 से हरा दिया। ये मुकाबला पश्चिम बंगाल के कल्याणी स्टेडियम में खेला गया। ईस्ट बंगाल एफसी ने पहला गोल 21वें, दूसरा गोल 38वें और तीसरा गोल 48वें मिनट में किया। ईस्ट बंगाल एफसी अपना अगला मैच 14 अक्टूबर को नामधारी एफसी के खिलाफ खेलेगी। दूसरी ओर कल मोहन बगान सुपर जायंट्स का सामना गोकुलम केरला एफसी से होगा। बात करें बैडमिंटन की तो भारतीय विश्व जूनियर मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आज गुवाहाटी में भारत ने अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात को 45-37, 45-34 से हराया। तो इस टूर्नामेंट में काफी शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का, तो कैसे देखते हैं आगे चल करके?
इस लेवल तक तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भारतीय टीम की जीत होगी, खास करके यूएई जैसे टीम के साथ जब आप खेलते हैं तो यू वुड एक्सपेक्ट अ क्लीन स्वीप। ये हुआ भी और अच्छी बात है, लेकिन सामने जब टूर्नामेंट में इंडोनेशिया जैसे टीम या चाइना जैसे टीम आती है, वहाँ पे कैसी प्रदर्शन करती है भारतीय टीम, ये देखने वाली बात है। और ये जूनियर्स का परफॉर्मेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रह गया, क्योंकि अब ये सवाल उठ गया है कि सिंधु के बाद कौन महिलाओं में, और पुरुषों में लक्ष्य सेन एक युवा तो है नहीं लेकिन सबसे यंग प्लेयर्स में से हैं, लेकिन कौन ऐसा खिलाड़ी है जो इन लोगों को, प्रणय को या किदंबी श्रीकांत को रिप्लेस कर सके? ये जूनियर प्लेयर्स के पास मौका है दिखाने का कि दे बिलोंग टू द हाईएस्ट लेवल, चाहे वो चीनी हो या फिर इंडोनेशियन प्लेयर हो, उनको हराए और फिर घर वापस आए और अपने आप को साबित करें कि दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन बैडमिंटन।
जी, जम्मू कश्मीर में 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता उत्साह के साथ चल रही है। आज इन खेलों का तीसरा दिन है, आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर के युवा सेवा एवं खेल निदेशालय की महानिदेशक अनुराधा गुप्ता ने कहा कि श्रीनगर में जारी अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। विभिन्न स्थलों पर खेले गए मैचों में खिलाड़ियों ने कौशल, प्रतिबद्धता और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया, जिसने फुटबॉल प्रेमियों और दर्शकों को रोमांचित कर दिया।
मैं पहली बार आ रहा हूँ कश्मीर में और दोनों टीम अच्छी है।
हम क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल राउंड के लिए। कश्मीर जगह बहुत ही अच्छी लग रही है, हमको यहाँ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ
मायसेल्फ पॉल फ्रॉम बैंगलोर रिप्रेजेंटिंग सीबीएसई टीम। इट इज रियली गुड मैच वे व्हाट वी प्लेड इन श्रीनगर। सो आवर बॉयज रियली प्लेड वेरी हार्ड एंड दे वन विद 2-1। सो टुमारो इज अ मस्ट विन गेम विद द पॉन्डिचेरी टीम।
इस बीच केरल ने उत्तराखंड को पराजित किया, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की टीम ने पुडुचेरी को हराकर टूर्नामेंट की सबसे एक तरफा जीत दर्ज की। महाराष्ट्र ने ओडिशा को हराया, मणिपुर ने तेलंगाना को हरा दिया, जबकि आंध्र प्रदेश ने डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी टीम को हराया। इसी तरह मणिपुर ने तेलंगाना को मात दी। विद्या भारती और उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। मेघालय ने तमिलनाडु को हरा दिया। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए श्रीनगर से मैं तारिक राठौर।
जी, जम्मू कश्मीर के इस वर्ष के राष्ट्रीय स्कूल खेलों में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 टीमें भाग ले रही हैं। और अगर हम बात करें खेलों की, तो केंद्र सरकार भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है सभी खेलों को। अगर हम बात करें,
ये बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, क्योंकि यहीं से तो हमारे फ्यूचर के सितारे उभर कर आते हैं। स्कूल का टूर्नामेंट हमेशा सबसे पहला पायदान होता है किसी खिलाड़ी को अपने आप को साबित करने का कि वो इंटरनेशनल स्तर पर कुछ कर सकें। और रही बात केंद्र सरकार की, जितनी तारीफ की जाए कम, क्योंकि पिछले 10 सालों में ये देखने मिला है कि बहुत पैसा युवा खेलों में लग रहा है। खेलो इंडिया स्कीम जो बना है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हो रहे हैं, इनमें से कई सितारे उभर कर आए हैं। तो ये अच्छी बात है कि स्कूल टूर्नामेंट सही तरीके से आयोजन हो रहे हैं, वहाँ पर से कुछ अच्छे खिलाड़ी निकल के आए तो भारत का भविष्य सुनहरा होगा।
बिल्कुल, और अभी हाल ही में बिहार में भी टूर्नामेंट कराया गया था, अभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, अभी दिल्ली में भी, अभी आज ही टेनिस चैंपियनशिप हुआ है। तो हर एक राज्य में ये खेलों का प्रभुत्व एक तरह से देखा जाए तो किया जा रहा है।
ये बहुत ज़रूरी है, हम सिर्फ पॉकेट्स में फंसे नहीं रहे, दो चार स्टेट्स में टूर्नामेंट करते ना रहे, हम और भी जगह देखें। और भारत में हर वो प्रांत में, हर वो क्षेत्र में खेल का बढ़ावा हो और बेहतर खेल के खेल और खिलाड़ी उभर कर आए, तो तब जाके आप जो 2036 ओलंपिक गेम्स का जो ख्वाब है, जहां पे हम 20 से ज्यादा मेडल की उम्मीद कर रहे हैं, वो पूरा होगा।
जी, बात करें टेनिस की, तो नई दिल्ली में फेनेस्टा ओपन राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में शीर्ष वरीय पार्थ सारथी, अर्जुन मुंधे, आकांक्षा घोष और रिद्धि शिंदे ने लड़कियों के अंडर 16 सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पार्थ सारथी ने स्वानिका रॉय को 9-2 से हराया, जबकि तीसरी वरीय आकांक्षा ने कृतिमा रंगनिनी को 9-2 से शिकस्त दी। संक्षेप में हम जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसको?
बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, नेशनल चैंपियनशिप माना जाता है इसे, और यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करना एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी होता है।
जी, और श्रोताओं, जाते जाते आपको ये बता दें कि पाकिस्तान के 8 विकेट गिर गए हैं। 23वें ओवर में 86 रन बनाकर पाकिस्तान ने 8 विकेट खो दिया है, और अब जाने का समय हो चला है। श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। राजा रमन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका फिर से धन्यवाद।
थैंक यू सो मच प्रशांत।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।